ओम शांति। तो पहली बात कि मुरली कैसे सुनना चाहिए, मुरली कैसे सुनना चाहिए कौन बताएगा? आत्मा समझ करके मुरली सुनना चाहिए। और कोई मुरली कैसे सुनना चाहिए? बाबा की याद में। गॉडली स्टूडेंट, सभी उत्तर बहुत अच्छा आंसर जी। बाबा को देखना, बाबा टीचर बनकर मुरली सुना ले, बहुत बढ़िया। सभी के उत्तर बहुत अच्छे, बाबा के सिवाय कोई पतित पावन नहीं बना। तो इस स्मृति में मुरली सुनना है। और मुरली कैसे सुने? सबसे पहले मुरली सुनते समय है ना, केवल जैसे कथा सुनते हैं ना वैसे नहीं सुनना है। मुरली कैसे सुननी है? उसे देखना है, उसे विजन है? तो बाबा ने बताया जो विधि, मुरली कैसे सुननी है, मुरली के साथ ही साथ क्या करते जाओ, अनुभव करते जाओ। क्या करो? अनुभव करते जाओ। केवल आप सुनेंगे, केवल शब्द सुनेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद नींद आने की चांसेस होगी, है ना? क्योंकि कान केवल सुन रहे हमारे, लेकिन मन बुद्धि उस पर अटेंशन नहीं है उसका, है ना, केवल कर्मेंद्रियां सुन रही बस। तो कई बार क्या होता है, जड़वत हो जाते हैं, और जड़वत होने से फिर किस अवस्था में चले जाते हैं, नींद की अवस्था में, है ना? तो इसीलिए क्या चाहिए हमें, कि जब भी हम सुने उसको क्या करें, अनुभव करते जाएं, देखते जाएं। जैसे अगर बाबा कहते हैं अमरनाथ तो अमरनाथ दिखाई दे, सोमनाथ सोमनाथ दिखाई दे। बाबा कहें, बाबा ने मान लो कहा बच्चे अभी घर को याद करो, तो घर को याद करो तो क्या दिखाई दे, परम धाम, परम धाम में है, घर की फीलिंग आ जाए। एक सेकेंड, तो जो भी बाबा कह रहे ना उसके साथ साथ हमें क्या करना है, अनुभव करना, वहां पहुंच जाना है। और हमारी इतनी कंट्रोलिंग पावर हो कि जब हम मुरली सुन रहे हैं तो हमारा कुछ संकल्प, हमारे कुछ आइडिया, हमारे कुछ वो नहीं चलना चाहिए। बाबा जो सुना रहे हैं ना, जैसे बाबा ने एक बार मुरली में सुनाया कि बच्चे हनुमान अपना पांव जमाकर खड़ा हो गया कि कोई मेरा पांव हिलाकर दिखाए, है ना? तो किसी ने कहा बाबा वो हनुमान नहीं था, वो तो अंगद था। तो बाबा ने कहा कि हाँ बच्चों, कोई भी हो, हनुमान हो या अंगद हो, बाबा का अर्थ तो क्या है, समझाने से मतलब ना। तो इसलिए जो बाबा कहते हैं ना उसी में केवल रमण करना, उसी में खो जाना, उसी को देखना, इसको कहेंगे मुरली। यदि आप ऐसे मुरली सुनेंगे ना तो कभी झुटका नहीं आएगा, कभी नींद नहीं आएगा, क्योंकि आप बाबा को की बातों को सुन रहे हैं और उसको फील कर रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और जब कोई भी चीज देखते हैं तो उसके भूलने के चांसेस कम होती है। इसीलिए आजकल देखेंगे कि लोगों की चीज बहुत गुम हो रही है, लोगों से चीज ना बहुत भूल जाते हैं, ढूंढते हैं। पहले लोग इतना नहीं भूलते थे, आजकल बहुत भूलते हैं। कई लोग तो मोबाइल पॉकेट में रखे रहते हैं, बैग में रखे रहते हैं, और सारा ज्ञान सोर चक्कर लगाते हैं, कहाँ है मोबाइल मेरा, मिल नहीं रहा। कई लोग चश्मा लगा करके भी चश्मा ढूंढ रहे होते, चश्मा कहाँ है मेरा। तो ऐसा हो जाता है, क्यों? क्योंकि जब है ना, जब कोई चीज रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ टेबल पर कोई चीज रखा या अलमीरा में कोई चीज रखा, तो आप रख रहे हैं इधर और कार्य इधर कुछ कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि डाइवर्ट है इधर और ये इधर का, तो देख नहीं रहे, मीन्स अटेंशन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। इसीलिए बच्चों को क्या कहते हैं कि ध्यान से, ध्यान से पढ़ो या ध्यान से कार्य करो, है ना। तो इसीलिए आजकल क्या हो रहा है कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, उसको देख नहीं रहे, जैसे जस्ट मशीन जैसा कार्य करते, इसलिए भूल रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज जब रखते भी है ना, कोई भी चीज रख रहे हैं आप, कहीं भी रख रहे हैं, तो एक बार नजर देख लें कि यहां रख रहा हूं। जैसे आप अपना कोई भी सामान रख रहे हैं जहां, तो उसको रखते रखते देखिए, रखते रखते अगर देख रहे हैं ना, तो फिर अगर आप सोचते कहां है मेरी चीज, मिल नहीं रही, तो ये दृश्य याद आएगा, क्योंकि जो आपने रखते समय देखा है ना, तो आपको याद आएगा, अच्छा टेबल पर रखा था मैंने। तो ये सावधानी रखनी है कोई भी सामान के लिए, वस्तु के लिए, कि कोई भी चीज जब रखें तो क्या करें, उसको देखें, देखते हुए रखें, देखते हुए कुछ भी। इसी प्रकार मुरली, मुरली जब सुनते हैं तो क्या करें, उसे देखें। बाबा ने कहा परम धाम तो देखें, सर्विस तो सर्विस, हाँ कैसे सर्विस करते हैं, तुरंत याद आना चाहिए। तो जिस भी विषय में बाबा हमें बताते हैं, उसे देखना है, उसे फील करना है। घर, बाबा ने कहा घर, घर याद आ जाए। बाबा ने कहा मधुबन, मधुबन। बाबा ने कहा सोमनाथ, सोमनाथ याद आ जाए, है ना। तो इसमें एक सावधानी चाहिए, बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है। जैसा कि आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, हम हमारे लिए कि तुम बच्चे पतित पावन बाप के श्रीमत पर, है ना, पतित पावन बाप के श्रीमत पर क्या बनते हो, पावन। और फिर क्या बन जाते हो, जब पावन, पतित पावन बाप के श्रीमत पर पावन बनते हो तो क्या बन जाते हो, पावन बनते हो। और फिर क्या बनते हो, पावन दुनिया के मालिक बन जाते हो, है ना। और जो अपनी मत पर पावन बनते हैं, जो अपनी मत पर पावन बनते हैं, उनको बाबा ने क्या कहा, क्या मिलता है उनको, कोई प्राप्ति नहीं। क्यों, 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 और बताइए। जैसे आप देखेंगे पहले के समय में जब बच्चों को पढ़ाते थे ना, गुरुकुल, गुरुकुल सिस्टम था, गुरुकुल में पढ़ाते थे बच्चों को, प्रैक्टिकल कैरेक्टर का, है ना, कैरेक्टर के बारे में पढ़ाते थे गुरुकुल में। तो उसमें क्या करते थे, किसको पढ़ाते थे, जैसे राजाई कुल के बच्चे हैं उनको पढ़ाई, उनको पढ़ाते थे। जैसे मान लो जो शस्त्र विद्या दिखाते हैं कि धनुष बाण सिखाना है, तो किसको सिखाते हैं, अर्जुन को लेते हैं, भीम को लेते हैं, क्यों। दूसरी तरफ एकलव्य है, एकलव्य को नहीं लेते, क्यों, भील का बच्चा है, क्यों नहीं लिया, फिर भी भील का बच्चा है लेकिन फिर भी क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो राजाई कुल का बच्चा है ना, उसको जब विद्या देते हैं वो क्या करेगा, राज्य की रक्षा करेगा, है ना। तो इसीलिए पहले परखा जाता है ये व्यक्ति है कैसा जिसको हम सिखाने जा रहे हैं। तो इसीलिए जो राज्य, राजवंश के हैं या राज्य की सुरक्षा करने वाले हैं, उनको जब हम कोई कला सिखाते हैं, युद्ध में पारंगत करते हैं, तो वो रक्षा करते हैं देश की। लेकिन यदि केवल कोई निशानेबाज है, केवल निशानेबाज होना कोई बड़ी बात नहीं, एकलव्य को सिखा दिया, लेकिन एकलव्य की विद्या का यूज कहाँ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं उससे वो डकैती में शामिल करने उसको यूज करे, चोरी में यूज करे विद्या को, है ना। तो जैसे एकलव्य को दिखाते हैं, एकलव्य निपुण था शस्त्र विद्या में, लेकिन बाद में वो कहाँ था मालूम है, किसकी सेना में था वो? जरासंध की सेना में रहा वो, जरासंध की तरफ से लड़ा है ना। तो इसका कारण क्या? निपुण था लेकिन लड़ किधर से रहा है? तो इसीलिए कहते कि विद्या भी उसको दिया जाता है जो देश हित में हो। ऐसा नहीं है किसी को भी दे दिया है ना, कोई बहुत निशानेबाज हो, सब कुछ हो, बहुत ही शक्तिशाली हो, लेकिन आपको क्या फायदा होगा? जी जी हाँ जी जी। तो वही अगर है कोई भी और उसके पास अगर विद्या है, लेकिन अगर आपके देश के खिलाफ यूज हो रहा है, मान लीजिए आपके देश में नहीं, आपके देश के खिलाफ यूज कर रहा है, तो क्या कहेंगे उसको? आपको अच्छा लगेगा? वो अच्छा लगेगा? तो इसी प्रकार बाबा ने क्या कहा, जो बाबा के श्रीमत पर पवित्र बनते हैं, जो बाबा के श्रीमत पर पवित्र बनते हैं उन्हें ही पावन दुनिया का की राजाई मिलती है ना। बाबा ने क्या कहा, आप नहीं तो आप जिसकी मत से पावन बने हैं उसी से वर्षा लो। बाबा ने यह भी कहा मुरली में कि जिनकी मत पर आप पवित्र बन रहे हैं उसी से वर्षा लो, है ना। तो इसमें क्या समझने की बात है, क्या सावधानी चाहिए इसमें? इसमें बहुत बड़ी सावधानी की बात है कि जब हम कोई भी बाहर की बुक पढ़ते हैं या कोई बाहर के विद्वान के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है, फिर क्या होता है, हम सोचते हैं कि इन्होंने तो बड़ा अच्छा कहा है, जो ही अच्छा हमने कहा ना उससे प्रभावित हुए, उसकी बात को हमने यूज किया ना, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये वफादारी नहीं है, ये इम्प्योरिटी हो गई। आपने जो ही एक को छोड़कर दूसरे को देखा, दूसरे को चुना, ये क्या हो गई, डिसऑनेस्टी, इम्प्योरिटी, यही इम्प्योरिटी हो गई है ना। तो पहले के समय में भी क्या दिखाते हैं, मान लो कोई पत्नी है, कोई स्त्री है, तो क्या देखती है, हमारा पति कैसा भी है, गरीब है, कमजोर है, कैसा भी है, वो जैसे मुझे रखेगा वैसे मुझे रहना है ना। कोई कितना भी बड़ा हो तो क्या हुआ, हमें जैसे ये रखेगा वैसे ही रहेंगे, उसको ये नहीं कि कोई दूसरा कोई बहुत अच्छा चीज दे दे तो नहीं, हम पति का दिया हुआ नहीं यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, ये क्या हो गई, अनिष्टी तो नहीं है ना, ये पतिव्रता तो नहीं है ना। तो ये अर्थात हमें बाबा जो देते हैं ना उसके आधार पर रहना, उसके आधार पर चलना, ये नहीं कि इनकी भी बात तो अच्छी लग रही, इन्होंने भी अच्छी बात कही, उनके आधार पर चलने लगना, मिस ये हम बाबा के प्रति हमारी क्या हो जाती है, डिसऑनेस्टी। मिस हमको लगता है कि बाबा की बातें हमारे लिए सफिशियंट नहीं है, इसलिए हम दूसरे जगह भी ढूंढते हैं। तो भले हम पवित्र बनते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा सन्यासी भी पवित्र बनते हैं लेकिन मनमत पर बनते हैं, अपनी मत से बनते हैं, है ना। तो अपनी मत से मिलते हैं तो उनको तो अपना ही वर्षा मिलेगा ना। आप जिसका कार्य करेंगे, जिसकी मदद करेंगे, जिसकी हेल्प करेंगे, उसी से आपको कुछ मिलेगा ना। आप सोचो कि आप कितना भी बड़े बड़े कार्य कर लो, कितने भी बड़ी सेवा कर लो, और आप जाके करो वो अमेरिका में, अमेरिका में मान लो अमेरिकन गवर्नमेंट में, अमेरिका में आप कर रहे हैं खूब अच्छे अच्छे कार्य, तो आपको कौन पेमेंट कौन करेगा, आपको अमेरिका की सरकार या वहां के लोग करेंगे ना, कि आप सेवा करो, आप कार्य करो अमेरिका में, तो आपको भारतीय गवर्नमेंट थोड़ी ना आपको देगी, है ना। तो जिसके कहने से आप कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, वहीं आपको वर्षा मिलेगा, है ना। तो बाबा के कहने से यदि आप कर रहे हैं तो आपको बाबा से वर्षा मिलेगा। बाबा के कहने से यदि पवित्र बनते हैं और बाबा की ही विधि से, ये भी आज बाबा ने कहा ना, कैसे पवित्र बनना है, पवित्र बनने का एक ही उपाय बाबा ने क्या बताया, जब हम आत्मा समझ करके बाबा को याद करते हैं, आत्मा समझ करके जब हम बाबा को याद करते हैं तब क्या बनते हैं, पवित्र बनते हैं, है ना। बाकी और कोई भी विधि है, अनेक विधि है, जैसे क्या कहते हैं पवित्र बनने के लिए, बाहर दुनिया में क्या है, कैसे पवित्र बनते थे, जंगल में चले जाओ, परिवार से विमुख हो जाओ, दूर रहो, तो खुद पवित्र बन जाएंगे। एक ये पवित्र बनने की विधि है। और बाबा ने पवित्र बनने की विधि क्या बोले, बोला बाबा ने कि ना आपको घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न दुनिया छोड़ना है, रहना घर में ही है, लेकिन क्या करना है, आत्मा समझना है, ये विधि है। जब आप आत्मा समझते हैं तो क्या होता है, जब आत्मा समझते हैं तो क्या होता है, आज जो चीज समझते हैं ना उसी चीज की आपको खींच होती है। आत्मा समझेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे आत्मा का ना, आत्मा समझ रहे हैं, आत्मा देख रहे हैं, तो क्या होगा, आत्मा आत्मा को खींचेगी, है ना। और जब देह समझेंगे ना, देह समझेंगे तो कौन खींचेगी, देह की दुनिया खींचेगी। मालूम है, माताओं को मालूम है कि कोई चीज ऊपर फेंकते हैं ना आकाश में, वो फिर धरती पर आ जाती है, क्यों मालूम है माताओं को, बैलून है, पतंग है, कोई कुछ भी उड़ के जाए लेकिन वो फिर धरती पर आ जाती है, क्यों बताएंगे माताएं, क्योंकि कोई भी चीज को धरती क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। एक कक्षा है हर एक वस्तु की, तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्षेत्र है, एरिया है, जैसे आप चांद के पास चले जाओ, चंद्रमा के नजदीक चले जाओ, तो फिर धरती नहीं खींचेगी, फिर कौन खींचेगा, चांद खींचेगा, है ना। तो जहां जिस क्षेत्र में जाते हैं उस चीज की खींच होने लगती है। तो जब हम देह समझते हैं तो हमको कौन याद आते हैं, हमारे देह के संबंधी याद आते हैं, देह की दुनिया याद आती है। लेकिन जो ही हम कुछ नहीं करते, इसमें और कुछ मेहनत नहीं करना, बस मेन मकसद मेहनत यही है कि आप क्या समझ रहे हैं अपने को। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पहला पाठ पक्का करो, मैं क्या हूं, आत्मा हूं। तो आत्मा समझते ही बाबा भी आत्मा है ना, परमात्मा, तो बाबा की ओर स्वतः खींच होने लगती है। लेकिन यदि देह है तो देह की दुनिया स्वतः आपको खींचेगी, इसमें और कुछ लॉ तो है नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा की विधि से जो पतित पावन बाप हैं, बाबा जैसे पावन बनाते हैं ऐसे पावन हमें बनना है ना। तो इस बात पे ध्यान रहे कि हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन ये देखना है कि बाबा के कहने से ही कर रहे हैं, कोई और विधि तो नहीं है, केवल किसी को खुश करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो आप बाबा के कहने से छोटा भी कार्य कर रहे हैं ना, छोटा भी कार्य, तो क्या हो जाता है, छोटा भी कार्य आप कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के कहने से कर रहे हैं। कोई छोटा भी काम कोई देश के लिए करता है ना, उसे क्या कहते हैं, देशभक्त। देशभक्त भी खाना बनाता है, देशभक्त भी कार्य कर रहा है, लेकिन किसके लिए, देश के लिए। उसकी कॉन्शियस में क्या है, कार्य वही कर रहा है। देखो भोजन हर एक बनाता है, एक भोजन बना रहा है ऐसे सिंपली, उसको कुछ अटेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, ऐसे वो क्या हुआ, मात्र भोजन है। लेकिन उसी भोजन को आप बाबा की याद में बना रहे, इस स्मृति से बना रहे कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। ये भोजन हमें भगवान के लिए ऑफर करना है। तो ये जब इस संकल्प से आप करते हैं तो वही भोजन क्या बन जाता है, ब्रह्मा भोजन बन जाता है ना। अब आप कहते हैं उसी भोजन को आप बाबा की याद में जब ग्रहण करते हैं तो वही भोजन है। देखो बनाया वो भी भोजन वहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, लेकिन जो बाबा की याद में बनाते हैं वो क्या हो जाता है, प्रसाद बन जाता है, ब्रह्मा भोजन बन गया, अदरवाइज साधारण भोजन। ऐसे आपने बाबा की याद में अगर भोजन नहीं किया तो क्या हो गया, मात्र भोजन हो गया। लेकिन यदि बाबा की याद में भोजन ग्रहण किया तो क्या हो गया, ब्रह्मा भोजन। तो ये है स्मृति। इसीलिए जब कोई भी कार्य कर रहे हैं और स्मृति में है कि बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है पवित्र बनने के लिए, बाबा ने कहा है आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो हर बात में बाबा याद आए, है ना। भले हमको लगता है कि कोई और महात्मा और विद्वान बोलता है, थोड़ा उसको भी यूज कर लेते हैं, यूज करके पवित्र ही तो बनना है ना, उसके कहने से भी पवित्र बन जाते हैं। तो यदि उसके कहने से पवित्र बन जाते हैं तो उसका वर्षा बाबा से नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये सावधानी बहुत रखनी है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो इसको चेक कर लें कि इसमें हम बाबा के कहने से कर रहे हैं या किसी और प्रभाव में, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे पुराना पढ़ा लिखा सब कुछ क्या करो, भूल जाओ, क्योंकि अगर पुराना भूलेंगे नहीं तो आपका मार्क्स ऐसे कट होता रहेगा, आपको लगेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आगे बढ़ते नहीं। इसीलिए बाबा के कहने से, बाबा की विधि से हमें पवित्र बनना है, तब पवित्र दुनिया के मालिक बने। जैसे बताया कि अगर आप अमेरिका में की गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे तो भारत की गवर्नमेंट आपको नहीं देगी, जहां करेंगे वहीं कपाएंगे ना। तो इसीलिए आप बाबा के लिए करेंगे तो बाबा से वर्षा पाएंगे ना, किसी और के लिए करेंगे तो क्यों बाबा देंगे। तो इसीलिए हमें पवित्र बनना है बाबा के कहने से। दूसरा बाबा ने क्या कहा, सर्विस में किस बात का ध्यान रखना है, जब हम सर्विस करते हैं तो, सर्विस करते हैं तो किस बात का ध्यान रखना है, डिसर्विस होती है, किस चीज से डिसर्विस होती है। सर्विस में, सर्विस से तो लोगों को सुख मिलता है ना, जब हम किसी की सेवा करते हैं उनको सुख मिलता है, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, सर्विस में जब हमारा पुराना स्वभाव संस्कार होता है ना, सर्विस में पुराना स्वभाव संस्कार, एक दो को देखते हैं हम, क्या देखते हैं, कई पांच सात लोग एक साथ सेवा कर रहे हैं, पांच सात लोग एक साथ सेवा कर रहे हैं और किसी एक को कोई आकर कहे आपने तो बहुत अच्छी सेवा किया, बहुत बढ़िया सेवा करो, उसकी महिमा कर दे, तो जो पांच छह हैं वो क्या कहेंगे, पांच छह जो और लोग हैं उनको क्या संकल्प चलेगा कि केवल इन्होंने ही किया क्या, हम लोगों ने नहीं किया क्या, ये क्या हो जाता, लून पानी जैसा हो जाता ना। तो सेवा जब करते हैं ना वो कोई बड़ी बात नहीं, सेवा सब एक साथ करते हैं, लेकिन जब सेवा में किसी को मान सम्मान, किसी को कुछ मिलता है तो कंपेयर करते हैं तो क्या होने लगते हैं, अंदर थोड़ा तकलीफ होती है कि हम भी कर रहे हैं तो हमको और इनको क्यों, इनको क्यों, हमको क्यों नहीं। तो इससे क्या होता है, ये जो कंपेयर करते हैं, ये कंपेयर करने से क्या हो जाते हैं, रूठने लगते हैं, रूठ जाते हैं, लून पाए, अच्छा इनसे बात ही नहीं करना है, ये तो भेदभाव रखते हैं, ये देखो इनको रिस्पेक्ट देते हैं हमको तो देते नहीं, है ना। तो ये जो पेपर आता है किससे आता है, कंपेयर करने से, रूठने से, है ना। लेकिन बाबा ने क्या कहा है हमें, बाबा ने हमें एक काम पहले ही दे दिया है। आपको कैसा बनना है? बाबा ने हमें क्या काम दिया? हमें कैसा बनना है? बाप समान बनना है। बाबा ने ही कहा ना, हमें कैसा बनना है? बाप समान। और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? जो हमारे साथ सेवा कर रहा है उससे, है ना। तो जब ऐसे कंपेयर करते हैं तो फिर हमारे अंदर रूठने की बातें आ जाती हैं। लेकिन हम क्या देखें तो हम नहीं रूठेंगे कि ये जो सेवा चल रही है ना, ये भी जो सेवा कर रहे हैं, ये किसकी सेवा कर रहे हैं? बाबा की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा क्या करो, जब भी सेवा करते हैं तो क्या फील करें? यज्ञ। क्या फील करें? ये यज्ञ की सेवा है, शिव बाबा का यज्ञ है, है ना। ये यज्ञ चल रहा है, तो यज्ञ में कोई सेवा कर रहा है, मुझसे भी अच्छी सेवा कर रहा है, तो खुश होना चाहिए कि भगवान के कार्य में कर रहा है, बहुत अच्छा है। ये नहीं कि हम नहीं कर रहे तो वो भी नहीं करें, नहीं। तो जब हम इस बात को ध्यान में रखेंगे ना कि ईश्वरी यज्ञ है, राजस्व स्वमेध यज्ञ है ना, भगवान का रचा हुआ यज्ञ है, और इस यज्ञ को हम लोगों को सफल करना है, जब इस कॉन्शियस में हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे ना, तो बाबा क्या कहते हैं, ये यज्ञ क्या करने वाला है? ये यज्ञ क्या करने वाला है? मनोवांछित फल देने वाला है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं ना, वो सब पूरी हो जाएगी, सब पूरी हो जाएगी। एक भाई था, वो बॉम्बे से आए हुए थे, वो वहां के क्या कहते हैं, राज्य परिवहन होते हैं ना पूरा, उसके मैनेजर थे या डायरेक्टर कुछ थे। तो वो जब यहां आए तो उनको लिफ्ट में सेवा मिली थी, तो लिफ्ट में सेवा जो शटर बंद करने वाला, हाथ से बंद करते हैं खोलते हैं ना, ऐसी मिली उनको सेवा मिली। तो उनको डॉक्टर बॉम्बे का क्या बोला था कि अभी आप ऑपरेशन कराएंगे तो ही ठीक होगा, क्या उसको बोलते हैं, लिगामेंट जैसा होता है ना उसको, लेकिन आपको थोड़ा हम टाइम देते हैं, एक महीने के बाद आना। इन्होंने भी बढ़ा लिया था, इन्होंने कहा कि हम मधुबन जा रहे हैं और सेवा करके आएंगे, फिर ऑपरेशन कराएंगे। यहां जब आए वो, जब लिफ्ट में उनको सेवा मिली, वो क्या करते थे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे भी बताया था, तो मैंने कहा आप सेवा चेंज कर लो ना। उन्होंने कहा नहीं, बाबा ने मुझे जो सेवा दिया वो मुझे करना है। तो उन्होंने क्या किया, उस हाथ से ना जो उंगली होती ना, फिंगर, जिसका ऑपरेशन कराना था उनको, बहुत लंबा ऑपरेशन था उसका, था फिंगर का लेकिन पूरा हाथ का कुछ करना था, बहुत लंबा। तो उन्होंने क्या किया, लिफ्ट का डोर बंद करते थे, खोलते थे, बंद करते थे, दिन में ही सेवा थी। जब वो वापस बॉम्बे गए एक महीने बाद, तो उन्होंने मुझे फोन किया था कि डॉक्टर ने बोला ये आपका कैसे ठीक कैसे हो गया है, कैसे आपका ये ठीक हो गया। डॉक्टर ने बोला वो तो जो ऑपरेशन करने के लिए जो बोला था उसकी अभी तो जरूरत ही नहीं, आपका तो ऐसे ठीक हो गया। तो इसीलिए आप जिस भी अंग को आप इस यज्ञ में लगाते हैं ना, उसमें बरकत हो जाती है। तो ये यज्ञ है, आप हमेशा ये कॉन्शियस में रहे कि बाबा का यज्ञ है और हर एक इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमें खुश होना चाहिए कि ये बाबा के यज्ञ में ये मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हमें कंपेयर नहीं कर, हम कंपेयर करेंगे ना तो फिर रूठेंगे, फिर ये करेंगे, ये छोटे बच्चों का स्वभाव हो जाता ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इसमें रूठना नहीं है, लून पानी नहीं होता है, क्योंकि यदि हम रूठते हैं तो क्या हो जाता है, यदि रूठते हैं तो क्या होता है। आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कह रही थी कि रूठना भी ये क्या है, पहले आपस में रूठते हैं, ठीक है, रूठते रूठते ऐसा संस्कार हो जाता ना पक्का रूठने वाले का, कि रूठने वाला फिर किससे रूठ जाता है, बाबा से भी रूठ जाता है, बाबा से भी रूठ जाता है, टीचर से रूठ जाएगा, रूठेगा तो क्या करेगा फिर? जैसे मान लो टीचर से रूठ गया तो क्या सोचेगा, अच्छा आज ये मुरली सुनाने आ गए क्या? तब ये मुरली सुनाने आ गए तो उसको मुरली नहीं याद आएगा, सामने कौन दिखाई देगा? कौन दिखाई देगा? न उसे मुरली सुनाई देगा, न किसकी मुरली है वो दिखाई देगा, सामने जो बैठा है वही दिखाई देगा। तो उसकी स्थिति कितनी पावरफुल हो जाएगी ना? तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये जो रूठने का संस्कार है इतना खतरनाक है कि बाबा से भी रूठ जाते हैं। तो इसीलिए अपने को इसमें बहुत संभालने की जरूरत है कि रूठने का संस्कार खत्म कर देना है। ऐसा नहीं किसी से बातचीत ही नहीं करें, बाबा ने कहा बातचीत बंद नहीं करना है, बातचीत बंद बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि बातचीत अगर आप बंद करेंगे अर्थात आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, और रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो क्या होगा, किसी को भी अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना तो आपको दुआ नहीं मिलेगी, और दुआ नहीं मिलेगी तो कोई भी प्रकार की सेवा हम किसके लिए करते हैं कि हमको दुआ मिले। अच्छी सेवा करेंगे तो बाबा से भी दुआ मिलती है, सभी आत्माओं से भी दुआ मिलती है। और किसी से नफरत करते हैं, हम बातचीत ही नहीं करते हैं तो बातचीत ही नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे तो वो भी तो दूर हो जाएंगे ना, तो उनको भी तो तकलीफ होती है ना, जिसको आप अवॉइड करते हैं उनको भी तकलीफ होती है। तो ये तो हमने क्या दिया, उसको दुख दे दिया ना, और बाबा क्या आए हैं करने, सबको सुख देने आए हैं, दुख सबका, बाबा सबका दुख हरने आए हैं और सुख देने आए, और हमने क्या किया, और ही दुख दे दिया। बाबा का कार्य क्या किया, और ही बढ़ा दिया है ना। जैसे किसी बच्चे को बोलो ये थोड़ा अच्छी तरह से काम करना, हाँ ये ग्लास को थोड़ा सफाई कर देना, वो ग्लास सफाई तो नहीं किया और ही तोड़ दिया। ऐसा ही बाबा ने कहा बच्चे हमारे इस यज्ञ में, इस सेवा में सहयोगी बनो, सबको सुख दो, सबको पवित्र बनाओ, और हमने क्या किया, और ही उसको दुख दे दिया, जो दुख तो था ही बेचारे को पहले से और ही दुख बढ़ा दिया। तो बाबा का कार्य हमने बढ़ा दिया ना, बढ़ा दिया कि नहीं? तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है, हमेशा यज्ञ ध्यान में हो, हम बाबा के सहयोगी हैं, बाबा का कार्य है, हमें बाप समान बनना है। तो बाप समान बनना है तो हर कार्य में देखें हम बोलते कैसे हैं, बाबा जैसा बोलते हैं, हम चलते कैसे हैं, बाबा जैसा चलते हैं, बाबा जैसे हर एक को रिस्पेक्ट देते हैं हम ऐसे देते हैं, बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे मेरे क्या हो, सिर के क्या हो, ताज हो, नैनों के क्या हो, नूर हो। तो कितना बाबा महिमा करता है हर एक बच्चे की। तो जब हर एक बच्चा इतना महान है जिसको भगवान नैनों में रखते हैं, सिर का ताज बना के रखते हैं, तो हमको अधिकार है क्या उसको नफरत करने की? किसी भी आत्मा को नफरत करने का हमारा अधिकार नहीं है, है ना? क्योंकि बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने यह भी जिम्मेदारी ली है कि बाबा इस सारे विश्व को बदल ही देगा। बस हमें क्या, बाबा ने कहा बाबा चाहे तो खुद बदल सकता है, एक सेकंड में बाबा बदल देगा विश्व को, लेकिन बाबा हम सभी का सहयोग क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमारे सहयोग से जब विश्व बदलता है ना, तो वो जो हमने सहयोग किया ना उसका हमको प्राप्ति मिल जाती है, कई गुना पदम गुना हमें वर्षा। तो बाबा हमारा भाग्य बनाने के लिए ये चांस देते हैं, अदरवाइज हम चुपचाप बैठे भी रहे ना, हम कुछ नहीं करें तो भी दुनिया बदल जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा है इस विश्व को परिवर्तन करने की एक ही विधि है, क्या, पहले स्वयं को बदलो, पहले स्वयं को बदलो, पहले हम खुद चेक करें कि बाबा ने हमको कहा है 8 घंटा योग करो, याद करो बाबा को 8 घंटा, तो जब हम बाबा की बात नहीं मान पा रहे हैं, खुद भगवान की बात नहीं मान रहे तो हम दूसरे पर गुस्सा करने के चाहे उससे रूठने के अधिकारी नहीं है ना। जब हम भगवान की बात नहीं मान रहे तो कोई हमारी बात नहीं मान रहा तो क्या बड़ी बात हो गई। हम तो भगवान की भी नहीं मानते है ना। तो इस प्रकार से जब आप कंपेयर करेंगे तो रूठेंगे नहीं। तो रूठने की आदत बहुत जल्दी खत्म करनी है, नहीं तो आज इससे रूठेंगे, कल उससे रूठेंगे, कल मम्मी से, कल पापा से, फिर घर वालों से, फिर किसी और से, फिर लास्ट में टीचर से भी रूठेंगे कि ये टीचर आएगी तो मुझे मुरली में जाना ही नहीं है। फिर टीचर से रूठेंगे, फिर धीरे धीरे भगवान से भी रूठेंगे, अरे कोई बात नहीं जाने दो, है ना। तो बाबा ने कहा ना भगवान का भी सामना कर देते हैं। ये क्रोध ऐसी चीज है ना कि वो रावण का रूप हो जाता है, कंस का रूप हो जाता है। जब क्रोध आता है सोचते हैं कौन है भगवान कौन ना, दिखाते हैं ना रावण का स्वरूप कैसा है। तो इसीलिए हमें रूठने का संस्कार खत्म करना है, नहीं तो हम आपस में एक दो से रूठेंगे, कल जरूर भगवान से भी रूठ जाएंगे। और बाबा ने कहा जो ही आप भगवान से रूठते हैं, मुरली मिस करते हैं, तो किससे कैंसिल हो जाता है। बाबा ने जो एक्सेप्ट किया है ना, है ना, उससे क्या हो जाते हैं, वर्षा कैंसिल हो जाता है जो बाबा से मिलने वाला है, है ना। तो इसीलिए हमको इस बात पर ध्यान देना है, अंदर से बहुत ही प्रैक्टिस करनी है कि हमको किसी भी हाल में क्या नहीं होना है, रूठना नहीं है, भूल के भी किसी से रूठे नहीं। और बाबा ने आज मुरली में क्या बताया कि देखो भगवान दिखाया कि राम को भी क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, सीता को भी क्या कहते हैं, राम को क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान राम, और सीता को भगवती सीता। तो बाबा ने कहा कि देखो जो त्रेता के राम हैं और सीता हैं वो दो कला नीचे आ जाते, उतर जाते ना, दो कला कम हो जाती है, दो कला कम हो जाती है तो भी उनको क्या नहीं कहेंगे, हाँ विकारी नहीं कहेंगे, पतित नहीं कहेंगे। और वो उतरते हैं, अंडरस्टूड ना, राम सीता क्या होते हैं, उतरते हैं, तो उतरते हैं तो क्या होते हैं, उनकी स्थिति नीचे आ जाती है लेकिन विकारी नहीं कहेंगे, पतित नहीं कहेंगे। तो क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वो फिर भी क्या होते हैं, पवित्र होते हैं, क्योंकि उनके अंदर और सब बातें आ सकती हैं लेकिन पवित्रता है। जैसे बाबा ने कहा कि कोई क्रोध है, क्रोधी है, क्रोध करता है ना, तो भी उसको क्या कहेंगे, काला मुंह नहीं कहेंगे, क्रोध किया लेकिन काला मुंह नहीं कहेंगे, उसे पतित नहीं कहेंगे लेकिन विकारी को पतित कहेंगे। तो जैसे कहेंगे त्रेता में, जो सतयुग से त्रेता में आते हैं तो दो कला बाबा ने कहा कम हो गई, 16 कला से 14 कला हो गई। तो इसमें क्या अंतर हो गया, उतरने में और गिरने में क्या अंतर हो गया, उतरने में और गिरने में क्या अंतर हुआ, केवल उतरते हैं ना तो स्थिति हमारी नीचे हो जाती है लेकिन और कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब गिरते हैं तो नाक मुंह सब कुछ कई जगह चोट लगेगा ना, टूट फूट भी जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ये देख लीजिए, जैसे हारमोनी हॉल का ऊपर दिख रहे ना, वहां से अगर सीढ़ी बनी हुई है ना, सीढ़ी है तो वहां से आप धीरे धीरे एक एक स्टेप उतर के आ जाते हैं, एक एक तो नीचे आ जाएंगे, है ना, नीचे आ गए, इतना ऊपर से नीचे, तो अभी ऊपर जितना दूर तक आपको दिख रहा है नीचे आने से नहीं दिखाई देगा, क्यों, स्थिति नीचे आ गई लेकिन फिर भी क्या नहीं होगा, आप धीरे धीरे उतरे है ना, होशो हवास में है ना, तो क्या होगा, नीचे आ गए लेकिन हमारा स्वरूप बहुत चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब गिर जाते हैं, मान लो वहां से गिर जाए कोई, तो हड्डी पसली सब क्या हो जाएगा, सब एक हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि गिरना ये है, गिरने में अंतर, उतरने में धीरे धीरे आते हैं, है ना। और गिरना मीन्स कोई कंट्रोल नहीं, है ना। तो जैसे कोई भी मकान है वो धीरे धीरे पुराना होता है, तो पुराना होता तो उसको रिपेयर करते हैं करते, लेकिन पूरा ही गिर जाए तो फिर नया निर्माण। तो ये जो सतयुग त्रेता में है राम सीता का या देवी देवताओं का, ये उतरती कला आ रही है। लेकिन द्वापर से क्या हो जाता है, गिरती कला, गिर जाते हैं, वहां से उतरते नहीं है, सीधा गिर जाते हैं। तो ये कारण है गिरने में और उतरने में, ये अंतर है, है ना। उतरने में धीरे धीरे पूरा होशो हवास में, और गिरने में कोई कंट्रोल नहीं, है ना। तो इसी तरह कहते हैं पुरुषार्थ भी, जब पुरुषार्थ भी आप करते हैं ना, जितना फास्ट करते हैं उतना ही सावधानी की जरूरत है। जितना आप तेज, आप बाबा को बहुत याद करते, 8 घंटा याद करने लगे हैं आप, जितना आपकी स्थिति पावरफुल, 8 घंटा याद कर रहे हैं बाबा को, पूरी तरह से आप मगन हो गए हैं सेवा में, अपनी स्थिति बनाने में, तो क्या होगा इसमें, इतना ही सावधानी की जरूरत है। जैसे कोई पैदल चल रहा है ना, पैदल चल रहा है तो गिर गया तो क्या होगा, पैदल चलने वाला गिर गया तो थोड़ा मोड़ा कुछ हो जाएगा। लेकिन यदि प्लेन चल रहा है, प्लेन जा रहा है, प्लेन अचानक रुक जाए तो क्या होगा। तो इसीलिए जब हमारी फास्ट स्पीड हो ना, तो हमें रुकना नहीं है, रुके। इसीलिए ज्ञान में भी देखा गया कि जो कोई धीरे धीरे पुरुषार्थ में चलते हैं ना, वो चलते रहते हैं, उनके अंदर ज्यादा वो कुछ नहीं आता। जो बहुत फास्ट पुरुषार्थ करते हैं ना, वो गिरते भी हैं तो ऐसे ही गिर जाते हैं। इसीलिए जानकी दादी कई बार कहती थी कि कोई एक स्टूडेंट चल रहा है ज्ञान में, अगर ज्ञान छोड़ दिया तो क्या होता है, एक ने ज्ञान छोड़ा तो इससे इतना नुकसान नहीं होता है जितना किससे होता है। जैसे मान लो एक टीचर है, वो ज्ञान छोड़ते तो उनको देख के, तो दादी कहती थी कि ये जैसे ऐसे है जैसे प्लेन क्रैश हो गया है ना। तो जितना हमारा एफर्ट, जितना हमारा पुरुषार्थ तीव्र, उतनी ही सावधानी की जरूरत है। थोड़ी भी लापरवाही आपकी चूक भयंकर साबित होगी। अगर आपकी गाड़ी बहुत तेज जा रही तो उतना ही अटेंशन। तो इसलिए हम लोग भी, हमें समझना है कि हम कितने इंपॉर्टेंट जगह पर हैं, हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा भी चुके तो हम चुक जाएंगे। और इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा अपराध क्या है मालूम है, आपको तैरना नहीं आता है और कोई डूब रहा है सामने, तो आपका इतना बड़ा अपराध नहीं माना जाएगा। अब तैरना ही नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको तैरना आता है और आप उसको बचा नहीं सके तो क्या कहेंगे, इसको अपराध माना जाएगा ना। तो जिसको बदलना है, अपने को चेंज करना है, लेकिन कोई इसके पास सिस्टम नहीं है, कोई इसको मदद नहीं है, तो नहीं चेंज कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि कोई बात नहीं, इतना कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। लेकिन आपके पास बाबा अवेलेबल हैं, भगवान उपस्थित है आपके पास, भगवान की मदद है, और फिर भी हम खुद को ना बदल सके, भगवान हमें विधि बता रहे हैं, बाबा विधि बता रहे हैं, तो भगवान के आने पर भी अगर हम नहीं बदले तो कब बदलेंगे बताइए, कि कोई और भगवान आएगा। है ना। तो इतना अटेंशन हो क्या, इससे अच्छा हमें कोई मदद करने वाला नहीं है। तो इसलिए हम बाबा की मदद लें, बाबा की मदद से पवित्र बने, प्योर बने, है ना। तो जितना जितना हम रूठते भी क्यों हैं, बाबा ने कहा जब हम देह अभिमान में आते हैं तो रूठते हैं, और जब सर्विस में रूठते हैं तो इससे क्या होता है, डिसर्विस तो हो ही जाते हैं ना। वो कहेंगे अच्छा ये लोग भी बीके भी ऐसे ही होते हैं। तो बाबा ने ही कहा कि जब देह अभिमान में आते हैं तो रूठते हैं, और रूठते हैं तो खुद भी दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुख देते हैं। और जब आत्मा समझते हैं, आत्मा समझ करके बाबा को याद करते हैं तो पवित्र बनते हैं, है ना। अगर आत्मा नहीं समझते हैं तो पवित्र नहीं बनेंगे। ये विधि है, अब कुछ भी कर लीजिए, यथार्थ पवित्रता तभी आएगी जब हम आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे। और इसीलिए इस बात पर अटेंशन देना है, इसको समझना है कि ठीक है बाबा की याद सभी जरूरी है, हर प्रकार की याद, लेकिन जो बीज रूप अवस्था है ना वो सबसे पावरफुल स्थिति है, उसे जरूर करना है। क्योंकि बाबा ने कहा है एक मुरली में कि अगर 2 घंटा से कम बीज रूप अवस्था है तो आपका संस्कार परमानेंट नहीं चेंज होगा। और बाबा की याद भी क्यों टूटती है, क्यों याद टूट जाती है, जब हम एक बिंदु को देखते हैं, एक बिंदु को देखते हैं तो क्या हो जाती है, याद टूट जाती है। तो हमें परमधाम में कितने बिंदु को देखना है, कितने बिंदु को, हमेशा हम जब परमधाम में स्थित हो ना तो देखें 2 बिंदु को, 2 बिंदु। तो बाबा कहते हैं ना आपस में चिपक जाओ, जितना आप चिपकेंगे उतना क्या होंगे, बाबा मीठा है ना तो मीठे के साथ रहते रहते आप भी कैसे हो जाएंगे, मीठे बन जाएंगे। तो इसीलिए परमधाम में 2 बिंदु देखें, हमेशा 2 बिंदु चिपके हुए आपस में, बैठे यहां लेकिन देखें 2 बिंदु चिपके हैं, एक बाबा और दूसरा कौन, मैं। ये विधि, इससे बहुत तेजी से आपके संस्कार चेंज होंगे। एक बार बैठे और आधा घंटा इसी स्थिति में, और कोई संकल्प नहीं, बस अब देखें परमधाम में 2 बिंदु। इसीलिए अर्जुन को भी क्या दिखाते हैं, अर्जुन को क्या करते हैं, उसको क्या स्वयंवर में था, कड़ाई में तेल रखा है ना, उसको तेल में देखना, परछाई में, ऊपर जो चक्र चल रहा है ना उस पर मछली है, उसकी आंख में उसको मारना है। देखना कहां है, नीचे तेल में, अब मारना कहां है, सोचिए कितना कठिन है, देखना नीचे और मारना ऊपर आंख में, उसके परछाई में देखे आंख में। तो हम लोगों की साधना कैसी है, अर्जुन से कम है क्या? हमारे लिए बाबा ने क्या बताया, आप किसको देखो सामने, पहला ही पाठ बाबा ने बताया, जो भी सामने दिखाई दे उन्हें क्या देखो, आत्मा देखो, और खुद को क्या समझो, आत्मा। तो आत्मा समझो, आत्मा देखो, तो सामने वाले को आत्मा देखो, खुद को भी आत्मा देखो, समझो अपने को आत्मा, समझो दूसरे को आत्मा, देखो लेकिन याद किसको करो, बाबा को, है? इसका अभ्यास पक्का करना है ना, अर्जुन जैसा कि देखना है आत्मा को लेकिन याद किसको करना है। क्यों बाबा ऐसा कहते हैं, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो जिसको सामने देखेंगे ना, अच्छा इसने वो किया था, इसका स्वभाव, उसी में अटक जाएंगे आप। यदि बहुत अच्छा है तो भी अटैच हो जाएंगे, चाहेंगे इसी के साथ रहूं, इन्हीं से बात करूं, यही अच्छे लगेंगे, और अच्छे नहीं है तो नफरत। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि भले देखो सामने किसी को भी आत्मा को लेकिन याद किसी बाबा को। तो जब आप आत्माओं को देखते हैं ना, आत्मा को देख करके, और जब बाबा को याद करते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो बाबा को याद करते हैं ना तो बाबा से आपको करंट आती है, और आपके द्वारा जो करंट है, आपका जिससे भी कनेक्शन है ना, उनको करंट जाती है, उसको करंट मिलती है, तो उसको भी मदद हो जाती है, बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। इसीलिए एक बार जानकी दादी ने कहा था बाबा से कि बाबा मेरी स्थिति तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी योग करती हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे उदासी रह रही है आजकल, तो बाबा ने क्या कहा मालूम है? बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारी स्थिति अच्छी है लेकिन तुमको घर वाले याद कर रहे हैं, घर वाले याद कर रहे हैं इसलिए तुम्हें उदासी आ रही है। तो इतनी सावधानी चाहिए कि हम भले यहां हैं लेकिन यदि कोई दुख हो के हमें दुख से याद करेगा ना तो वो दुख के वाइब्रेशन हमको आएंगे। कोई मुंह बस याद करेगा ना तो उसके मुंह के वाइब्रेशन हमको आएंगे। तो इतना हमें न्यारा रहना है, इतना डिटैच रहना है कि हमारे लिए कोई दुखी ना हो। और ये कब होगा? जब हमारी के लिए हमारे अंदर रहम होगा ना। कोई आपको कितना भी घृणा करे, आप करके देखो, आप कुछ दिन रहम रखो किसी के लिए, उसको भी आपके लिए रहम आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप दे रहे हैं ना, आप जो देंगे वही पाएंगे, जो देंगे वही पाएंगे। आप रहम देते रहेंगे ना तो आपका रहम बढ़ता रहेगा और फिर आपको रहम मिलेगा। कहां कहां से मिलेगा? एक तो आपको खुद द्वारा मिलेगा क्योंकि आप श्रेष्ठ, दूसरा बाबा द्वारा। सबसे बड़ा मार्क्स देने वाला कौन है? बाबा। और तीसरा जिस आत्मा को दे रहे हैं वो भी रहम से जब भर जाएगा तो स्वतः आपके पास आएगा। इसीलिए बाबा ने कहा ना कि ज्ञान धन से क्या करना है, अपनी झोली क्या करनी है, भरपूर करनी है। ज्ञान धन से जब झोली भरपूर कर लेंगे तो क्या होगा? आपको खुशी रहेगी। जितना आप धन बांटते जाएंगे ना उतना क्या होगी? खुशी होती जाएगी, आपकी खुशी बढ़ेगी, है ना। और आपका धन क्या होगा? बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें ये विधि अपनानी है कि हर एक के लिए क्या करें, हर एक के लिए सम्मान, हर एक के लिए इज्जत, हर एक के लिए रिस्पेक्ट। कंपेयर करें बाबा से, क्यों? कि बाबा हर एक को अपने सिर पे रखता है, सिरताज बनाता है, कहता है हर एक सिरताज है। हर एक को बाबा नैनों का नूर कहता है। तो मैं कैसे इनको नफरत करूं जिन्हें भगवान इतना रिस्पेक्ट देता। तो जब ये बात अटेंशन में रहेगा ना तो हम किसी से रूठेंगे नहीं। जब रूठेंगे नहीं, अच्छा व्यवहार होगा तो स्वतः डिसर्विस नहीं होगी। तो इतना हमें ध्यान देना है। फिर बाबा ने क्या बताया? ये सारी सृष्टि क्या हो गई है, बन जाएगी। ये सारी सृष्टि क्या है? यज्ञ बन है। जो बाबा ने यज्ञ रचा ना, बाबा ने ये नहीं कहा कि थोड़े दूर में यज्ञ रचा। बाबा ने आज मुरली में बहुत बढ़िया कहा कि सारे सृष्टि ही, सारा सृष्टि पर ही बाबा ने यज्ञ रच दिया है। कहा ना आज बाबा ने कि सारी सृष्टि पर ही यज्ञ रचा है। और इस सारी सृष्टि में कौन स्वाहा हो जाएंगे? बाबा ने बहुत अच्छा कहा आज, मेरा मेरा है ना, जो सब कहते हैं ना ये मेरा है ये मेरा है। तो बाबा ने कहा ये मेरा मेरा कहने वाले सब क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, कोई मेरा कहने वाला नहीं रहेगा। तो बाबा ने कहा कि सारी सृष्टि पर ही बाबा ने क्या किया है? यज्ञ रचा है। और इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया क्या हो जाएगी? स्वाहा हो जाएगी। और फिर कौन उत्पन्न हो जाएंगे? बाबा ने क्या कहा, कौन आ जाएंगे इस सृष्टि पर? देवताएं, है ना। और बाबा ने क्या कहा कि पुण्य का खाता जमा करना और कराना, है ना। ये करने वाले आप कौन है? मास्टर, शिक्षक, है ना, मास्टर शिक्षक बाबू, बाबा ने ऐसे कहा ना। तो पुण्य अर्थात, पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चैरिटी, चैरिटी कहते हैं ना। और डोनर होता है, डोनर, दान। तो दान और पुण्य दोनों शब्द एक साथ जुड़ा है, दान पुण्य। तो एक शब्द है दान, दूसरा है पुण्य। पुण्य शब्द जो है ना दान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुण्य को कहा बाबा ने एक है दान, दान अर्थात आपके पास जो एक्स्ट्रा है वो आप दान दे देते, सोचते हैं हमारे पास ना ये ज्यादा है मैं ये दे देता हूँ। आपके दिल में जो भी आया आपके पास जो एक्स्ट्रा है आपने किसी को दे दिया, वो भी अच्छा है, चलो आपने दे दिया, ये लो भाई मेरे पास है ये एक्स्ट्रा तो दे दिया आपने। ये है जो आपने बिना किसी कास्ट का दे दिया, क्या हो गया? दान। लेकिन पुण्य क्या है? पुण्य हम अपने हिसाब से नहीं करते हैं, दान आप अपने हिसाब से करते हैं कि हमारे पास क्या ज्यादा वो हम देते हैं। पुण्य अर्थात सामने वाले की क्या आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि कोई ठंड से कांप रहा है, बहुत ठंडक है ना, बहुत ठंडक है, और आप उसको क्या करते हैं, उस समय आप साल दे देते हैं, कंबल ये लो ओढ़ लो, आपने उसको ठंडक से बचा लिया उसी समय, ये क्या हो गया? पुण्य हो गया। कोई भूख से तड़प रहा है, किसी को बहुत प्यास लगी है, प्यास लगी उसको आपने पानी पिला दिया, ये क्या हो गया? पुण्य। भूखे को आपने भोजन करा दिया, ये क्या हो गया? पुण्य। लेकिन आपने ऐसे ही दे दिया कोई चीज दान, वो भी ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा है तो रख के क्या करेंगे, आप दे दो तो अच्छा है दान। लेकिन पुण्य सामने वाले की आवश्यकता क्या है? अभी सामने वाले की आवश्यकता क्या है? बाबा ने क्या कहा, आपको पुण्य करना और कराना भी है। क्या पुण्य करना है? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? ज्ञान रत्नों का दान करना। और इस समय सबसे ज्यादा कमी क्या हो गई है? आप देखो इस दुनिया में आप कभी भी कोई बात कर, जब कंपेयर करो ना, देखो कि किसको ये जरूरत है, किसको मदद की जरूरत है, आप किसको मदद करने जा रहे हैं, तो आपका ना कभी पुरुषार्थ कम नहीं होगा, आप कभी भी नीचे नहीं, ऑटोमेटिक चलेगा। आप कोई भी बात में कंपेयर करो ना, देखो ना, तो आप सोचो मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, किसकी सेवा कर रहा हूं, बाबा की है ना, हमेशा भले एक आत्मा की आप सेवा कर रहे हैं, उसको ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन बुद्धि में क्या रहे, बाबा के कहने से कर रहा हूं, है ना। पुण्य क्या, जैसे कहा ना कि किसी को क्या आवश्यक है, आवश्यकता के समय पर मदद करना, ये पुण्य है। इस समय किसको किसकी आवश्यकता है? भगवान को आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? पवित्रता की। स्वयं भगवान को आवश्यक है क्या? पवित्रता। तो किसी को पवित्र बनना बनाना है ना, तो पहले स्वयं पवित्र बने और दूसरे को बनाए, ये भी बहुत बड़ा पुण्य हो गया। अपना स्वभाव इतना सरल इतना मीठा बनाए, है ना, कि हमको देख करके अन्य आत्माएं भी प्रेरणा लेके हमें भी ऐसे मीठा बनना है, हमें भी ऐसे खुश रहना है, तो ये क्या है? ये भी पुण्य है। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा शिक्षक कौन है, जो केवल शब्दों से नहीं, किससे सिखाए? अपने आचरण से, है ना। जब आप किसी से बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं ना, तो आपको सिखाना नहीं पड़ता है, आप ये नहीं कहेंगे किसी को कि आप बहुत रिस्पेक्ट से बोलो, बहुत रिस्पेक्ट से देखो, आपको सिखाना नहीं, आपको करना है। आप करें कहें मतलब प्रैक्टिकल में कर रहे हैं ना, तो सामने वाला स्वतः सीख जाएगा, है ना। तो ये है पुण्य, पुण्य। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब आप मास्टर शिक्षक समझते हैं तो कौन याद आ जाता है? बाबा याद आता है, कि हमें बनाने वाला कौन है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, अटेंशन में रखें, कभी भी कंपेयर करें तो बाप समान। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, मास्टर शिक्षक बनो, पुण्य करो और कराओ, और किसके जैसा? बाप समान। ये भी बाबा ने शब्द यूज किया ना, बाप समान। तो आप एक ही चीज का लक्ष्य रखो बस, कि हमें कैसा बनना है, बाप समान। हर चीज में कंपेयर करो, आप बोलो भी तो कंपेयर करो कि बाबा ऐसे बोलते हैं, बाबा ऐसे देखते हैं, बाबा ऐसे किसी को समझाते हैं, बाबा ऐसे किसी को नफरत करते हैं, तो हर बात में अब जब कंपेयर करने लगते हैं, अब फिर उसमें परिवर्तन लाते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि आपने जो भगवान की डिमांड है ना, परिवर्तन करने की, तो आपने पहले किया क्या किया, पहले खुद को परिवर्तन किया। और जब खुद के परिवर्तन द्वारा हम दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं, दूसरे चेंज होते हैं, है ना, तो ये पुण्य, एक तो हम खुद चेंज हुए थे, पुण्य हमने किया, दूसरा चेंज हो रहा है तो पुण्य कराया, तो हम मास्टर शिक्षक बन गए। तो कुछ इसमें मेहनत है क्या? किसी को बोलेंगे पता नहीं अच्छा लगे या नहीं लगे, नहीं, हम खुद चेंज होकर दिखाएं, हम किसी को रिस्पेक्ट दें। तो इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो क्या होता मालूम है, सामने वाले को आप ऐसा दिखाई देते हैं जैसे ये तो विधाता है, ये बाबा ने मुरली में कहा। किसी को आप रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो उसके अंदर जीने का उमंग आ जाता है, है ना, कोई पुरुषार्थ से एकदम नीचे आ गया है लेकिन आपने उसका उमंग बढ़ा दिया ना, वो लग जाता पुरुषार्थ में, है ना। तो ये है पुण्य, पुण्य अर्थात किसी को स्थिति में स्थित कर देना, बाप समान बना देना, है ना। और बाबा ने क्या कहा, संगठन के महत्व को जानने वाले ही संगठन में स्वयं के क्या सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन में रहना इतना आसान नहीं है, है ना, संगठन में बहुत कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है, है ना। तो लेकिन संगठन में रहने वाले स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं, संगठन में ही उसके जो महत्व को समझते हैं। जैसे आप अपने कमरे में सोए हैं अकेले घर पे, आप घर पे अकेले सोए हैं ना, कुछ नहीं सीखेंगे, क्या सीखेंगे आप बताइए, अकेले सो रहे हैं, अकेले उठ के आ रहे हैं। लेकिन मान लो आप मधुबन में आए, एक कमरे में आए हैं और एक कमरे में कई लोग सोए हैं, आप सो रहे हैं, बगल में देख रहे हैं किसी को तकलीफ हो रही है, उसको आपने मदद कर दिया, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको आपने हेल्प कर दिया। आप कमरे में पहले से रुके हैं, कोई नया आ गया, उसको आपने मदद किया कि ये बेड पर आओ, ये आपका बेड है, सहयोग किया समय पर ना, ये संगठन में आप सीखते हैं, हर पल सीखते हैं। संगठन में आपके कमरे में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आप छोटी छोटी भी मदद कर रहे हैं तो सीखते हैं, आपकी भी सेफ्टी। तो ये संगठन इतना सिखाता है, इतना सिखाता है। तो इसीलिए यदि हम हमेशा ये याद रखें ना, जब भी कुछ कार्य कर रहे हैं, इसको कहते हैं क्या, ध्यान में रखें, हम ईश्वरीय यज्ञ हेतु कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये यज्ञ सेवा आपको मनोवांछित फल देने वाला है, क्योंकि यज्ञ जब याद आता है ना, इसमें आपको सब याद है, क्या ये यज्ञ किसका, भगवान का, किसके लिए, नई दुनिया के लिए, और किसकी आहुति देनी है, विकारों की। तो जब यज्ञ देखते हैं, यज्ञ समझते हैं, इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है कि यदि आप 11 दिन भी मधुबन में, मधुबन अर्थात आप जहां भी हैं, इस स्थिति में रह करके, है ना, आप सेवा करते हैं ईश्वरी यज्ञ समझ करके, तो बाबा ने कहा है कि आप 11 दिन में 11 जन्म की कमाई कर सकते हैं, इतना बड़ा इसका महत्व है। तो हमेशा जब हम सेवा करें ना, तो ईश्वरी यज्ञ है ये समझ कर करें, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि आज की मुरली में हम लोगों ने मुख्य अटेंशन किस बात पर ध्यान दिया, हम लोगों ने एक तो ये कि पवित्र बनना है, लेकिन कैसे, जैसे बाबा ने कहा, बाबा की विधि से पवित्र बनना है। अगर बाबा की विधि नहीं, आप मन मत से कोई और किताबों का आधार बनाया, कोई और महात्मा की बातों को आधार बनाया, तो उससे आपको पवित्र दुनिया का वर्षा नहीं मिलेगा। दूसरी बात क्या, सेवा में किस बात का ध्यान बताया बाबा ने, रूठना रूसना ये सब है, तो सेवा में सफल भी नहीं होंगे, डिससर्विस होगी। तो इसके लिए अपने को चेंज करें, है ना। गिरने का भी बताया, क्यों दो कला कम होती है राम सीता को, लेकिन उनको फिर भी पतित नहीं कहेंगे। क्यों? ये भी बाबा ने आज एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, बहुत अच्छा।